संस्कार ठन ठन ठनन ठन गली के निवासियों को पिछले एक माह से हर शाम लोहा कूटते हथौड़े की यह आवाज सुनने को मिलती है। निरंतर 3-4 घंटे तक, कभी दिन भर भी लोहार के हथौड़े की आवाज इस बात की प्रतीक है कि एक नया प्राणी इस गली में आकर बस गया है। अब सभी उसे पहचान गए हैं। इसका नाम लक्षण है। कहां से आया है? अकेला क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर शायद गली के किसी निवासी के पास नहीं, लेकिन सभी इसकी दिनचर्या से परिचित हो चुके हैं। आग में तपे लोहे का रूप परिवर्तित करने के लिए लक्षण निरंतर हथौड़ा चला रहा था, निरंतर लोहा कूट रहा था। दया का तनिक भी भाव उसके मुख पर नहीं था, उसके मुख पर कठोरता थी, कर्म की आभा थी, भट्टी की धधकती अग्नि की लालिमा थी। सांस का स्वर कुटते लोहे की आवाज के संग मिलकर एक संगीत में स्वर लहरी उत्पन्न कर रहा था। ठन ठनन ठन हु हा, ठन ठनन ठन हु हा, हां सच में स्वर लहरी संगीतमय ही तो थी। रूप परिवर्तन लीला के इस सुंदर पक्ष को प्रदर्शित ही तो कर रही थी। कर्म प्रयत्न और लग्न का सम्मिश्रण शिव की उत्पत्ति में सहायक है और इन सभी भावों का उद्गम क्षेत्र संगीत में स्वर लहरी युक्त ही तो है। एक व्यर्थ के लोहे के टुकड़े को आग में तपाकर हथौड़े की चोटें मारकर उपयोगी बनाया जा रहा था। गली के इस लोहार की यही दिनचर्या है। दिन भर बाजार में पिछली शाम का बनाया माल बेचता है और शाम के समय भट्टी के सम्मुख बैठकर लोहे के बेकार टुकड़ों से उपयोगी वस्तुएं बनाया करता है। रात गहरी होते भीतर झुग्गी में जाकर सो जाता है। इसका कोई अपना नहीं, कभी किसी को याद भी नहीं करता। अकेला है, परंतु इसके चेहरे को देखकर यही महसूस होता है कि इसे कभी अपने अकेलेपन का कष्ट नहीं होता। दिन भर शारीरिक परिश्रम करता है, मगर कभी उफ नहीं करता। इसे अपने कर्म से सदा आनंद मिलता है। अपना एक कर्म क्षेत्र है इसका, छोटा सा, दुनिया के सारे छल प्रपंचों से दूर। जो कुछ करता है खुशी खुशी करता है। कर्म के फलस्वरूप जो भी मिलता है खुशी खुशी उसे स्वीकार करता है। फल के प्रति इसके मन में कभी आक्रोश नहीं आया, कभी पीछे मुड़कर भी इसने नहीं देखा, कभी आगे के सपने भी नहीं लिए। इसने कभी वे दिन याद नहीं किए जब इसका भी एक छोटा सा परिवार था, जब इसके भी बहुत से साथी थे, जब यह थाना बादोश कहलाता था। पत्नी इसकी मर गई और पीछे रह गया अकेला। अपना अकेलापन उसे काट खाने लगा। समूह के दूसरे साथियों को हंसते खेलते देखकर वह उनसे कटने लगा। दूसरे बार बार आग्रह करते दूसरी शादी करने को, लेकिन वह अपनी प्रिय पत्नी को नहीं भुला पाया और फिर एक दिन बिना बताए इस गली में चला आया। खपरैल की छत के नीचे वह रहने लगा जो बरसों से लावारिस पड़ी थी। धीरे धीरे वह पीछे के दिन भूल गया और अपने आज में लीन रहने लगा। अपने कर्म से वह कभी नहीं उबा, कभी पश्चाताप भी नहीं किया उसने। अब इसके लिए जो है जैसा है वही ठीक है। इसे अपना जीवन अत्यंत सरल महसूस होता है। और इस गली के अन्य निवासी इस लोहार के जीवन से कितनी दूर बसे जीवन में सांस लेते हैं। इनका जीवन अत्यधिक जटिल है, कूटे जा रहे लोहे के समान। ये लोहार नहीं, इन्हें हथौड़े की अनगिनत चोटें खानी पड़ती हैं। तब कर जब ये एक निश्चित रूप पा लेते हैं तो अपने कच्चेपन की घड़ियां, ठन ठन के स्वर से भरी अपनी संघर्षमयी घड़ियां ये याद नहीं करना चाहते। लेकिन जब कुछ गम सा मन में छाया होता है, जब निराशा का मन पर अधिकार होता है, तब इन्हें अपने अतीत के उन क्षणों की याद आती है जब ये नियति के हथौड़े की चोटें खा रहे थे, जब इनका व्यर्थनीय रूप धधकती अग्नि में तपाया जा रहा। उन क्षणों को ये तब अपने स्मृति पट पर बिखेरते हैं। इसलिए नहीं कि वे क्षण वर्तमान से सुंदर थे, बल्कि इसलिए कि वे क्षण एक नई सीख प्रदान करते हैं। और लक्षण को निरंतर भट्टी के पास बैठा देखकर गली के लोग इसे अपना प्रेरक मानने लगे। सभी इसे आते जाते ध्यान से देखते हैं, कुटते लोहे पर नजर डालते हैं, धधकती ज्वाला को देखते हैं और अपनी इन सब से तुलना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। साधुराम ने गली में प्रवेश किया, लोहार के हथौड़े की आवाज उसके कानों में पड़ी। कदम और आगे बढ़ाए, लक्षण की खपरों से बनी झोपड़ी के पास आकर रुक गए। साधुराम ने उसकी ओर देखा, पसीने से लथपथ, कृष्ण काया, कानों में बड़े बड़े कुंडल, मैले कुचैले वस्त्र, निरंतर हथौड़ा चलाने में मग्न लक्षण। उसकी सांस का स्वर इतना तीव्र था कि 6 फुट दूर खड़ा साधुराम सुन रहा था। सांस और कुटते लोहे की स्वर लहरी का मिश्रण उसके कानों में रस घोलने लगा। ठन ठन ठनन ठन हु हा, ठन ठनन ठन हु हा, एकाएक स्वर रुक गया। लक्षण को अपने समीप किसी के खड़े होने का आभास हुआ। हथौड़ा रोक कर उसने दृष्टि घुमाकर देखा, साधुराम ही था। साधुराम से लक्षण का परिचय पहले दिन ही हो गया था। उस शाम जब वह लोहा कूट रहा था तो साधुराम ने उसके समीप आकर पूछा, भैया पुराना लोहा खरीदोगे? लक्षण ने दृष्टि उठाकर आगंतुक की ओर देखकर कहा था, जी ले लूंगा। और जब साधुराम एक थैले में 3 किलो के लगभग लोहा लेकर आया तो लक्षण से परिचय प्राप्त करने लगा। लक्षण ने उसमें आत्मीयता की झलक पाकर अपने विषय में सब कुछ उसे बता डाला। उस दिन के पश्चात साधुराम गली में आते जाते लक्षण को राम राम अवश्य करता था। साधुराम को यूं खड़े देखकर लक्षण मुस्कुराने लगा। सांस को नियंत्रित कर उसने कहा, राम राम बाबा, कहो कैसे हो? राम राम लक्षण, मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ। मजे से कट रही है, फिर कुछ रुक कर बोला, 2 दिन से दिखे नहीं, कहीं गए थे क्या? हां करनाल गया था, भतीजी की शादी पर। शादी पर गए थे? अच्छा, मिठाई लाए होंगे, खिलाओ ना। हां हां क्यों नहीं। इतना ही कहकर साधुराम उसकी खपरैल के नीचे चला आया। हाथ में पकड़ी पोटली खोलकर उसने मिठाई की 2 मुट्ठियां भरकर लक्षण को थमा दी। अपनी धुन में मस्त लक्षण एकदम मिठाई पर टूट पड़ा। उसने साधुराम को धन्यवाद तक नहीं कहा। साधुराम ने मिठाई खाते लक्षण की ओर प्रेममयी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर बढ़ गए। घर का दरवाजा बंद था, मगर केवल सांकल ही चढ़ी थी। साधुराम समझ गया कि शांति मंदिर गई होगी। दरवाजा खोलकर वह भीतर चला आया। पोटली एक ओर रखकर वह आंगन में बिछी खाट पर लेट गया। लक्षण शायद मिठाई समाप्त कर चुका था, क्योंकि उसके हथौड़े की आवाज फिर से आने लगी थी, ठन ठनन ठन ठन। कभी लगता था जैसे लोहे के टुकड़े को कूटता हथौड़ा कह रहा हो, जाग उठ ठन ठन, जाग उठ ठनन ठन, जाग उठ। ऐसा स्वर उठता महसूस कर साधुराम स्वयं से कहने लगा, जाग जा इंसान, जाग जा इंसान। इस समय साधुराम का मस्तिष्क एक अनोखे आनंद की अनुभूति पा रहा था। एकाएक वह उठ बैठा, अपने शरीर को देखने लगा, उठकर भीतर कमरे में चला आया, बत्ती जलाकर दर्पण के सम्मुख खड़ा हो गया, अपने रूप को निहारने लगा। लंबा दुबला शरीर, झुर्रियों भरा चेहरा, मुख में केवल चार दांत, वह भी काले पके हुए बाल, आंखों में मोटा चश्मा और बाईं बाजू के स्थान पर झूलता कपड़ा। साधुराम अपनी बाजू के रिक्त स्थान को देखने लगा और उसी को देखते हुए वह कमरे में बिछी खाट पर लेट गया। उसकी दृष्टि छत पर जा टिकी। सफेद छत पर उसे कुछ चित्र नजर आने लगे। साधुराम अक्सर ऐसे ही कहीं और खो जाया करता था। उसकी दृष्टि जब कभी किसी वस्तु पर कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाती थी, उसी के आधार पर वह अपने अतीत में खो जाता था। अब अपनी कटी बाजू पर दृष्टि टिकी की उसी के विषय में विचार करने लगा। इन क्षणों में उसे अपने इस अंग का अभाव खलने लगा था। वह एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य होने की कल्पना करने लगा, मगर उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन की सभी बहारें किसी व्यक्तित्व के साथ बिताई है। उसकी बाजू तो बचपन में ही कट गई थी। बहुत पहले अपने बचपन का उसे वह दिन स्मरण हो आया, जब वह एक पूर्ण स्वस्थ बालक था। गांव भर के बच्चे नित्य जमींदार की हवेली के उद्यान में मिलकर नए नए खेल खेला करते थे। उनमें बालक साधुराम भी होता था। जमींदार का पुत्र गणेश उसका मित्र था। गणेश का स्वभाव बहुत कोमल था। वह मिलनसार प्रकृति का था। सभी उससे प्रेम करते थे। उस दिन गणेश और उसके साथी उद्यान में आंख मिचोली खेल रहे थे। सभी खेल में मग्न थे। साधुराम भी अंधे बने लड़के के आगे पीछे भाग रहा था, परंतु रह रहकर उसकी दृष्टि हवेली के मुख्य द्वार पर खड़े चौकीदार की ओर चली जाती थी। साधुराम उसकी दुनाली बंदूक को बार बार देखता। वह बहुत उत्सुक था उसे अपने नन्हे नन्हे हाथों में उठाने के लिए। प्रतिदिन मन में उठने वाली यह चाह आज बलवती हो उठी थी। खेलना छोड़कर वह एक ओर खड़ा होकर टकटकी बांधकर बंदूक को देखने लगा था। सोचने लगा था कि चौकीदार काका से मांग कर देखे, शायद वह उसे दिखा दे। मगर काका के मुख पर छाए रोब से उसे भय लगता था। आखिर साहस कर डरते डरते वह काका के निकट चला आया। बंदूक पर अपनी ललचाई दृष्टि टिकाकर काका से बोला, काका मुझे यह दिखा दो। साधुराम ने बंदूक की ओर तर्जनी से संकेत किया। क्यों, क्या करोगे, काका ने पूछा। यूं ही। नहीं नहीं, ये कोई खिलौना नहीं है, दिखा दो ना, साधुराम ने तनिक आग्रह किया। कह दिया ना, नहीं, यह बच्चों के लिए नहीं होती। मैं कोई बच्चा हूं, अपने शरीर पर दृष्टि डालकर साधुराम ने कहा। नहीं तो क्या बूढ़े हो, काका ने मुस्कुराकर कहा। इस बंदूक से तो लंबा हूं। हां हां हो, मगर तुम अभी इस लायक नहीं। फिर जरा रोब भरे स्वर में काका बोले, बस अब जाकर खेलो, दिखा दो। नहीं, जाओ, काका ने डांट दिया। साधुराम सहम गया। उसने कभी डांट सुनी तक ना थी। माँ बाप तो थे नहीं, मामा मामी ने फूल की भांति उसे पाला था, इसीलिए उसका हृदय फूल की भांति कोमल था। थोड़ी सी डांट भी नहीं सह सकता था। उसकी आंखों से दो आंसू टपक पड़े। काका ने यह देखा तो झट से आगे बढ़कर बड़े स्नेह के साथ उसकी आंखें पोंछ दी और पुचकारते हुए बोला, अरे बच्चू, इसमें रोने की क्या बात है? जब बड़ा हो जाएगा तो जी भर के इसके साथ खेलना। जाओ, अब जाकर खेलो। साधुराम चुप हो गया। वहां से हटकर दोबारा साथियों के बीच लौट आया। उसका मन अभी भी उत्सुक था। सोच रहा था, अभी मेरी उम्र क्यों नहीं, 10 बरस का तो हो चुका हूँ। यूं ही डराता है काका। फलस्वरूप उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। तभी उसे अंधे बने बालक ने पकड़ लिया। सभी बालक हर्ष से चिल्लाए। अब साधुराम की अंधा बनने की बारी थी। ना चाहते हुए भी उसे अपनी आंखों पर पट्टी बंधवानी पड़ी। तभी एक बालक ने उसे धीमे से धक्का दिया। साधुराम इधर उधर हाथ मारते हुए भागने लगा। कोई पीछे से आकर उसे धौल जमा देता था, कोई चूंटी काट लेता था। साधुराम उनकी आवाज के सहारे हाथों से टटोलते हुए किसी एक को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। आखिर 5 मिनट की भागा दौड़ी के उपरांत उसने एक लड़के को पकड़ लिया। आंखों से पट्टी खुलते ही उसकी दृष्टि सीधे चौकीदार काका की ओर गई। उसने देखा बंदूक मुख्य द्वार के साथ बनी कोठरी के दरवाजे से टिकी पड़ी है और चौकीदार काका झाड़ियों की ओर जा रहा है, शायद मूत्र त्यागने। यकायक साधुराम के हृदय की धड़कन बढ़ गई। उसके मन की ललक तीव्र हो उठी। उसने अपने साथियों की ओर देखा। वे फिर से खेल में मग्न हो गए थे। वह एकदम बंदूक की ओर भागा। झट से बालक साधुराम ने बंदूक को कुंदे से पकड़ लिया, फिर उसे सीधा अपने शरीर के साथ टिका लिया और उसकी नाली को पकड़कर सीधा खड़ा हो गया। घोड़े को छेड़ने के लिए वह थोड़ा झुका। ऐसा करते समय बंदूक की नाली उसकी बांह से जा लगी। उसने घोड़े को दबाने का प्रयत्न किया, तनिक जोर लगाया और उसी क्षण वातावरण में जोर से धमाका हुआ। साधुराम की चीख सारी हवेली में गूंज गई। वह गिरकर तड़पने लगा। रक्त का फव्वारा उसकी बांह से फूट पड़ा था। क्षण भर पश्चात ही वह बेहोश हो गया। साधुराम को जब होश आई तो उसने दृष्टि घुमाकर अपने आसपास का निरीक्षण किया। इस समय वह एक कमरे में था। उसके सामने ही मामा मामी खड़े थे। दोनों के चेहरे उदास थे, आंखों में आंसू थे। उसकी दाईं ओर जमींदार साहब खड़े थे और जब उसने अपनी बाईं ओर दृष्टि घुमाई तो उसे अपने किसी अंग का अभाव महसूस हुआ। लेटे लेटे ही उसने अपनी आंखें अपने शरीर पर दौड़ाई, अपने शरीर के प्रत्येक अंग को हिलाकर देखने लगा। बाईं ओर कुछ रिक्तता पाकर उसने उठने की चेष्टा की और अपनी बाईं बाजू ना देखकर चीत्कार कर पुनः बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा एक डॉक्टर उस पर झुका हुआ है। साधुराम के मुख से निकला, मामी मामी, मेरी बाजू कहां गई? उसकी पुकार सुनकर मामी उसके समीप चली आई। उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेरते हुए मामी ने कहा, कुछ नहीं हुआ साधु, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मामी ने तब अपने आंसुओं को रोकने का भरसक प्रयत्न किया था। नहीं नहीं, मेरी बाजू कहां गई? वह फफक फफक कर रोने लगा। यह देखकर सभी की आंखों में आंसू भर आए, मगर जो हो चुका था उसे यह नमकीन पानी कैसे झूठ कह ठुकरा सकता था। नदियां कितनी हैं, समुद्र में अथाह जल राशि है, मगर धरती पर सूखा तब भी पड़ जाता है। प्राणी पानी पानी कहते प्यासा मर जाता है, फसलें तब भी नष्ट हो जाती हैं। सूखे की भूख को कोई नहीं रोक पाया। आज हमने कितनी उन्नति कर ली है, मगर तब भी देश के किसी न किसी भाग में सूखा पड़ा ही रहता है। दस दस दिन अन्न देखने को नहीं मिलता। भूख के कारण आंतें कुल बुलाने लगती हैं, आंखें बाहर आने को होती हैं, मगर आंसू कुछ नहीं कर पाते, वे भी सूख जाते हैं। बुरे समय कौन साथ देता है, सब कुछ सहना पड़ता है जीने के लिए। जीवन कितना अमोल है, जो भूख भी सह लेते हैं उसकी चाह में, जो अपंग बने भी हंसते हैं। अपंग हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, यहां जीवन के लिए सब कुछ सहनीय है। तभी बाहर कुछ खटका हुआ, साधुराम चौंक कर उठ बैठा। बाहर कोई आया था, शायद शांति, शांति ही थी। भीतर बत्ती जलती देखकर बाहर से ही उसने कहा, भीतर कौन है? साधुराम उठकर बाहर चला आया कहते हुए, मैं हूं। कब आए? शांति ने पूछा। आधा घंटा हो गया। बाहर आकर साधुराम खाट पर लेट गया। मैं मंदिर गई थी, शांति ने स्पष्टीकरण दिया जैसे उसकी आवश्यकता हो। मैं समझ गया था। कल क्यों नहीं लौटे? शांति ने उसके पाए ताने बैठते हुए प्रश्न किया। कृष्ण ने आने नहीं दिया। साधुराम ने आंखें मूंद ली, दो क्षण तक चुप्पी रही, फिर शांति ने पूछा, शादी ठीक हो गई ना? बहुत अच्छी हुई, बड़ी धूमधाम से विवाह किया कृष्ण ने अपनी लड़की का। चलो अच्छा हुआ, ईश्वर सबकी बेटियों की लाज रखता है। फिर उसने पूछा, आपने क्या दिया? 21। फिर कुछ रोक कर बोला, सभी मेरे चेहरे को देख रहे थे। भला क्यों? क्यों क्या? शांति यही सोचते होंगे कि भाई की बेटी और शगुन सिर्फ 21 रुपए। तो क्या हुआ, सोचने वालों ने भी तो उतना ही दिया होगा जितना वे दे सकते हैं। दिखावट में भला क्या रखा है? सामर्थ्य अनुसार जितना दिया जाए वही अधिक होता है। तब साधुराम ने कहा, तुम ठीक कहती हो शांति, हमारी जाति के लोग दिखावट पसंद हैं, सभी बाहरी तड़क भड़क में विश्वास करते हैं। घर में खाने को रोटी ना हो, लेकिन कहीं बाहर जाने के लिए बढ़िया सूट चाहिए। घर में पांच पांच बेटियां बेशक हो, मगर इकलौते पुत्र के विवाह में दहेज के रूप में भारी रकम चाहिए। जानती हो, कृष्ण ने दहेज में 50,000 रुपया नगद दिया। 50,000? शांति की आंखें फटी की फटी रह गई। हे राम, इतना कैसे दिया होगा उसने? इतने रुपए शांति को स्वप्न मात्र लग रहे थे। उसे किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी यह दहेज प्रथा उचित तो नहीं? शांति, सामर्थ्य हो या नहीं, यह प्रथा तो हमारे खोखलेपन की प्रतीक है। लड़कियां सभी की होती हैं, कोई दहेज दे सकता है कोई नहीं। इसी लेन देन के कारण कभी किसी लड़के का कभी किसी लड़की का जीवन स्वप्न बिखर जाता है। लड़कियां बेचारी तो समाज रूपी चक्की के दोनों पाटों में पिस जाती हैं। हम माँ बाप बस निजी स्वार्थ की सोचते हैं, पुत्र ब्याहते हैं दहेज की मांग करते हैं। पुत्री ब्याहनी होती है तो यही प्रयत्न रहता है हमारा कि कम से कम दहेज देना पड़े। फिर कुछ रुक कर बोला, अपना समय अच्छा था शांति, समाज में तब समानता थी। चाहे कोई धनी हो चाहे गरीब, विवाह सभी सादगी से करते थे, सभी एक दूसरे का आदर करते थे। बड़े अपने बड़प्पन को दिखाना पसंद नहीं करते थे। उनका यही प्रयत्न रहता था कि उनसे छोटे उन्हें अपना हमदर्द समझे, स्वयं को हीन ना माने। बड़ा अच्छा समय था हमारा। तब शांति ने कहा, समय बदलते देर नहीं लगती। कल क्या था उसे कितना भी याद कर ले, कैसे वही सब लौट आएगा। तब जैसे व्यंग सा कसा उसने समाज पर, लोग पढ़ लिख गए हैं, अब पैसा बहुत हो गया है, पैसे के जोर पर एक दूसरे को खरीदने की होड़ लगा ली है सबने। तरक्की का यह पहलू समाज के किस रूप को प्रदर्शित करता है। तब स्वयं बात समाप्त करते हुए बोली, खैर छोड़ो, हमें इस सब से क्या लेना। हाँ कृष्ण खुश तो था ना? हाँ बहुत खुश था, और तुम्हारे ना आने पर उसने रोष प्रकट किया। बोला, भाभी को देखे बहुत बरस बीत गए, उन्हें जरूर लाना था। फिर आपने क्या कहा? शांति ने उत्सुकता से पूछा। कहना क्या था, एक ही बहाना है हम बूढ़ों के पास, जान ठीक नहीं थी उसकी। चलो ठीक ही कहा, अब सचमुच ही जान कितनी रही है, धीमे से शांति ने कहा। साधुराम उसकी बात सुनकर कुछ ना बोला, चुपचाप लेटा रहा। वह शांति की प्रकृति से भली प्रकार परिचित था। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। साधुराम आंखें बंद कर गुनगुनाने लगा था। शांति कुछ देर तक तो उसके मुख पर निहारती रही, फिर उठते हुए स्वयं से बोली, चलूं खाना तैयार करूं। साधुराम ने सुना तो बोला, मैं दो ही रोटी खाऊंगा। क्यों, भूख नहीं है क्या? शांति ने प्रश्न किया। रास्ते में कुछ खा लिया था। अच्छा, कहकर शांति रसोई घर की ओर बढ़ गई। साधुराम आंगन में लेटा कोई भक्ति गीत गुनगुना रहा था। तभी उसका मस्तिष्क अपने विवाह की सोचने लगा। मेरा विवाह कितनी सादगी से हुआ, कोई धूम धमाका नहीं किया गया था। दो बैंड वाले मेरी घोड़ी के आगे थे और मैं दूल्हा बना था। मेरे मन में तब कितना उल्लास था, लेकिन कहीं दूर कोने में भय की मूर्ति सिमटी बैठी थी। बार बार मन सोचता था कि क्या वधू मुझे स्वीकार करेगी, जबकि मैं अपंग हूँ। मैं तब घबराहट में इतना भी नहीं सोच पा रहा था कि वधू द्वारा मैं जांचा परखा जा चुका हूँ। साधुराम का मस्तिष्क कुछ और पीछे हटकर सोचने लगा, कुछ और कितनी प्रतीक्षा कराएगा? क्या जीते जी मुझे बहू का मुख देखने को नहीं मिलेगा? अभी तक तो साधुराम मामी के आग्रह को मजाक में टाले जा रहा था, लेकिन एकाएक वह गंभीर हो गया। चुपचाप मामी के मुख को ताकने लगा। मामी ने तब उन्हें कहा, क्यों अब बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है? क्या तू मेरी कामना पूरी नहीं करेगा? मगर मामी, साधुराम कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शब्द उसके गले से बाहर ही नहीं निकलते थे। मगर क्या मामी, मुझसे शादी कौन लड़की करेगी? मैं ठहरा अपंग, उसने तेजी से अपनी बात पूरी कर दी। मन से तो अपंग नहीं ना, काम भी तो करता है, किसी से मांग कर तो नहीं खाता। मामी ने कहा, इससे क्या हो जाता है, मुझे कोई लंगड़ी लूली ही मिल सकती है, और यहां ऐसी कोई लड़की है नहीं। साधुराम के स्वर में दुख था। क्यों, लड़कियों को ताकता रहता है रे? मामी ने उससे मजाक किया। मामी, साधुराम ने कहा, तुम समझती क्यों नहीं? मामी कुछ रुक कर बोली, तो तू ब्याह की इसलिए नहीं सोचता कि तुझे कोई अपनी लड़की नहीं देगा, यही बात है ना? हाँ, और अगर मैं लड़की ढूंढ लूं तो? यूं ही किसी को कहोगी तो जग हंसाई होगी, कोई नहीं मानेगा, साधुराम ने कहा। और यदि मैंने ढूंढ ली हो तो? मामी मुस्कुरा पड़ी। झूठ बोलकर ढूंढी होगी। क्या मतलब? मामी को आश्चर्य हुआ। यही कहा होगा कि मेरा बेटा सुंदर स्वस्थ है। तू निरा पागल है, मामी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं भला ऐसा क्यों कहने लगी? अरे तुझे सावित्री ने स्वयं ही अपनी बेटी शांति के लिए चुना है। क्या कह रही हो तुम? साधुराम को एकाएक विश्वास नहीं आया। झूठ नहीं, उसने कल मुझसे स्वयं कहा है। फिर बोली, मेरे बेटे में कमी ही किस बात की है? अच्छी भली दुकान है, अपना घर है, भगवान का भक्त है, उसे और क्या चाहिए? हाथ को उसे चाटना है? बेटा, मन को अपंग नहीं बनाना चाहिए। मन पूर्ण हो तो कभी कोई बाधा सामने नहीं टिक सकती। एक हाथ नहीं तो क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार कहा है, हाथ कर्म के प्रतीक हैं, कर्मण्यता के नहीं। और तब साधुराम ने सोचा, हाँ हाथ कर्म के प्रतीक हैं, कर्मण्यता के नहीं। कर्मण्यता का प्रतीक तो मस्तिष्क है, मन में उठने वाली जिज्ञासा और जिज्ञासा से ज्ञात को पूरा करने की लगन है। अब क्या सोचने लगे, मैंने सब तय कर दिया है, पूर्णिमा के दिन शगुन आएगा। मामी तब साधुराम के सिर पर हाथ फेरने लगी, उसने आंखें बंद कर ली। शांति ने उसे पुकारा कि उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। खाना पककर तैयार हो गया था। साधुराम रसोई घर में आकर चुपचाप चौकी पर बैठ गया। शांति ने उसे खाना परोस दिया। खाना समाप्त कर वह उठा तो शांति ने पूछा, दूध लोगे? हो तो दे देना। बरामदे में लगे नल से साधुराम ने कुल्ला किया और फिर घर के छोटे से आंगन में टहलने लगा। शांति अपना खाना पका चुकी थी, थाली में परोसकर बाहर आंगन में बिछी खाट पर बैठकर खाने लगी। साधुराम भीतर से अपना बिस्तर ले आया और उसे दूसरी खाट पर बिछाकर लेट गया। शांति चुपचाप खाना खाती रही। ऊपर तारों भरा आकाश था, झिलमिलाते सितारे साधुराम को बहुत अच्छे लगते हैं, वह उन्हीं को निहार रहा था। शांति रसोई घर का काम समाप्त करने के उपरांत अपने बिस्तर पर लेट चुकी थी। शायद उसकी आंख लग गई थी, क्योंकि उसके बिस्तर पर किसी प्रकार की हलचल ना थी। लेकिन साधुराम अभी भी जाग रहा था और निरंतर टिमटिमाते तारों को देख रहा था। इन्हीं को निहारते हुए वह स्वयं को धीरे धीरे ऊपर उठता महसूस कर रहा था। सितारे उसे क्रमशः अपने समीप आते प्रतीत हो रहे थे। यह सब कुछ स्वप्न था, मात्र एक स्वप्न। साधुराम का संपूर्ण जीवन ही सपनों से लिपटा है। बीते क्षण उसे स्वप्न सम ही लगते हैं। क्या था वह कभी, कभी क्या हो गया? कैसा था कभी उसका जीवन, कभी कैसा हो गया? कभी क्या कुछ सोचता था, कभी कुछ और सोचने लगा। कभी क्या उससे कहा गया, कभी कुछ और कहा जाने लगा। कभी कभी तो साधुराम स्वयं को कठपुतला कहकर पुकारने लगता था। कठपुतला, जिसका अपना कुछ भी नहीं, न कोई विचार, न संस्कार, न जाति, न समाज, न हृदय, न आत्मा, कुछ भी तो नहीं। धागों की ताल पर जिसे अंगुलियों के निर्देशन में नाचना पड़ता है, कैसे भी नचा लो, अपने लिए उसका कुछ भी नहीं। दूसरों को हंसाना है, हंसा लो, दूसरों को रुलाना है, रुला लो, स्वयं के लिए हंसी रही नहीं। आंसू भी हैं अपने तो किसी दूसरे की याद में बहते हैं। पलकें अभी झपकी ही थी इस मंतव्य से कि कोई सपना ही उसकी रात को बिता देगा, और वह अभी कुछ विचार ही कर रहा था कि कहां जाए, किस दिन को याद करे कि सतीश का नाम उसके मानस पटल पर अंकित हो, जैसे कोई बात उसे एकाएक स्मरण करा बैठा। झट से उठ बैठा वह, शांति की ओर देखते बोला, शांति सुनती हो, सो गई क्या? उसकी आवाज सुनकर शांति हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या है, क्या हुआ? तो उसने कहा, तुम्हें बताना ही भूल गया था मैं। रतनलाल मिला था मुझे, बहुत पहले बंबई गया था वह। सतीश मिला था उसे वहां, उसने बताया अब वहीं रहता है। ससुर के साथ साझे में काम है उसका, बहुत पैसा है अब उसके पास। एकाएक यह सुनकर हिलोर सी उठी उसके मन में, पूछा, घर का पता? वह तो उसे भी नहीं मालूम, बाजार में मिला था, दो ही मिनट बात हो सकी उससे, ना उसने उसे पता बताया न घर आने को कहा। साधुराम का स्वर शांत था। चाचा के लड़के से भी उसने अजनबियों सा व्यवहार किया, कितना बदल गया है, हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा उसने? तब उत्सुकता से पूछा शांति ने, हाँ कैसे हैं वे? बस, और अब उसे याद ही क्या रही होगी हमारी? साधुराम की आंखें बह निकली, लगता है अब उसे याद करने का कोई फायदा नहीं, अब कभी नहीं आएगा, हमें भूल गया है वह। शांति की आंखें भी भर आई। चलो है तो अच्छा भला, इसकी खबर तो लग गई, साधुराम ने आंखें पोंछते हुए कहा, और उसे भी मालूम पड़ गया कि हम अभी जी रहे हैं, सुखी रहे, हमारी जिंदगी तो अब कट ही जाएगी। शांति ने भी अपनी आंखें पोंछ ली। लेकिन शांति, मुझसे अब काम नहीं होता, साधुराम जैसे फिर विवश हो उठा, अपने को रोक नहीं सका। मुझसे भी होता है क्या? लेकिन करना तो पड़ेगा, इसके सिवा चारा ही क्या है? शांति ने जैसे उसे वास्तविकता का एहसास करवाया, काश कोई सहारा मिल जाता। साधुराम के मन में एक नई चाह उभरी, सतीश के सिवा और कौन है? शांति ने पूछा, कोई भी, अपना ही जब सहारा नहीं बना तो दूसरा कोई क्यों बनेगा? शांति ने सच्चाई का एहसास करवाया उसे, कोई ऐसा जिसका अपना कोई ना हो, जिसे चाह हो एक घर की। उसने अपनी कल्पना आगे बढ़ाई, ऐसा कौन होगा? भूल जाओ, कोई नहीं मिलने का, यूं ही अकेले रहना है, कोई नहीं आएगा। तब जैसे उसे रात का ध्यान हो आया, बोली, अब सो जाओ, तुम थके हुए हो। और तब दोनों निराशा से भरे बिस्तर पर लेट गए। कुछ ही देर में उनकी आंख लग गई। साधुराम का मन उड़ता हुआ उन बिखरे क्षणों को समेटने में लग गया था एक बार फिर। साधुराम अब इस विषय पर अधिक नहीं सोचता था, सोचता था जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। सतीश के एक लड़का हो चुका था और इच्छा के बावजूद भी उन्होंने केवल बधाई का पत्र डाला था। शांति कहती रहती, पोता है, एक बार देख आए, एक बार गए तो फिर सारी कड़ियां टूट जाएंगी। महीना 15 दिन वहां लग गए तो दुकान फिर उखड़ जाएगी, पहले भी सारा काम चौपट हो गया है। साधुराम अपनी जगह सही था, उसे मालूम था वहां टिके रहना अब उसके बस की बात नहीं। और अब उसे इस बात का भी अनुभव हो गया था कि इतने लंबे समय तक दुकान बंद करके उसे घाटा ही हुआ है, सारे पक्के ग्राहक टूट गए थे उसके, अब बड़ी मुश्किल से दो प्राणियों के गुजारे लायक ही निकलता है और कुछ नहीं, कभी कभी तो दिन भर मक्खियां मारता रहता है। अगले पत्र में सतीश ने चुपचाप पत्र के साथ अपने पुत्र के दो चित्र भेज दिए। शांति को उन्हें बार बार चूमकर ही संतोष करना पड़ा। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। सतीश के महीने में 2-3 पत्र आ जाते थे और साधुराम एक पिता का फर्ज समझकर उनका उत्तर दे दिया करता था। मगर एक दिन फिर फिर भावनाओं का तूफान उमड़ आया उनमें, उन्हें सुप्त भावनाओं में आक्रोश भर गया। सतीश का पत्र पढ़कर साधुराम को उसी प्रकार उत्तेजना महसूस हुई जैसे पहले जब कभी उससे पूछे बिना सतीश कोई काम कर दिया करता। शांति ने जब पूछा क्या लिखा है, तब साधुराम की निगाह बरबस अपने टूटे फूटे मकान की ओर उठ गई। उसने एकाएक शांति की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस केवल सामने टूटी फूटी दीवारों को देखता रहा और बोला, शांति, दुनिया वालों के एक एक करके सपने पूरे होते हैं, मेरे एक एक करके सभी सपने टूट गए। आखिर उसने क्या लिखा है, शांति ने उन्हें पूछा। तुम्हारे बेटे ने अपना मकान खरीदा है, साधुराम ने व्यंगपूर्ण स्वर में कहा। शांति एकाएक खुश हो गई, बोली, तो इसमें ऐसे सोचने की क्या बात थी, उसने तुम्हारे सपनों को कहां तोड़ा है, मकान बनाया है, अपनी कमाई है, हमारा सिर तो और ऊंचा कर दिया उसने, देख लेना मकान के बाहर तुम्हारा नाम ही लिखवाया होगा उसने। और ये मकान शांति ये किसका है, मेरा ही है क्या, उसका नहीं, जो मेरे बार बार कहने पर उसने तनिक भी परवाह नहीं की, एक बार भी नहीं सोचा जहां बाप रहता है पहले उसे तो सुंदर बनवा दूं, कितनी बार कहा उससे लेकिन जवाब यही दिया कि बचत नहीं है कैसे भेजूं, और अब अपना मकान बना लिया, साफ कर दी सारी तस्वीर, मुझे वह अपना नहीं समझता, यह मकान अब उसे काट खाता है। साधुराम की भावनाएं ऐसे ही तो हमेशा उमड़ती थी कि वह एक ही चीज से इतना लिपट जाता था कि उससे छुटकारा पाना दुर्भर जान पड़ता था उसे। तुम कब तक इन भावनाओं से लिपटे रहोगे, तुम्हारी इन्हीं भावनाओं के कारण ही तो हम आज यहाँ बैठे हैं, सतीश ने तो नहीं कहा था हमें यहाँ आने को, हम वहाँ होते तो गृह प्रवेश की सारी रस्म हम अदा करते। तब साधुराम बीच में ही बोल पड़ा, मैं यदि भावनाओं की कद्र करता हूँ तो तुम बस छोटी सी बात पर दूर दूर की सोचने लगती हो, तुम्हारी कल्पना यथार्थ को बिल्कुल भूल जाती है, हम वहाँ होते तो गृह प्रवेश की रस्म अदा करते, कैसे कह रही हो यह तुम, हम वहाँ नहीं थे पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वह दो पैसे की चिट्ठी डालकर हमें बुला भी नहीं सकता था, हम उसके लिए है ही क्या, हमसे उसका संबंध ही क्या रहा है। चिट्ठियों के पुल पर चलते चलते एक दिन ऐसा तूफान आएगा कि तुम और मैं देखते रहेंगे, और हमारा बेटा कहलाने वाला ये सतीश देखना तो क्या, हमें याद करना भी भूल जाएगा। साधुराम के इन शब्दों ने शांति के मन में सिहरन पैदा कर दी, उसने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन साधुराम भावनाओं के वेग में कभी कभी ऐसी बातें कह जाता था कि भविष्य का चित्र आंखों के सम्मुख खींचकर भय व्याप्त हो जाता था अस्तित्व में शांति के। अपने शब्दों से वह भी डर गया था, अभी तक पहले उसने कभी ऐसी कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आज एकाएक ऐसी बात मुख से कैसे निकल गई, अपने जीवन के लिए अपने ही मुख से निकाली भविष्यवाणी उसने। कुछ देर ठहर कर वह फिर बोला, लेकिन अब शांत स्वर था उसका, तुमने ही तो मेरे साथ बैठकर उसके छुटपन से लेकर जवानी तक कितनी ही कल्पनाएं की थी, ठीक है वह अफसर बना, उसकी शादी भी हो गई, सुंदर सा लड़का हो गया, अब घर भी बना लिया है उसने, लेकिन हमारे लिए क्या रहा, मैं निस्वार्थ भूल सकता हूँ, भूल सकता हूँ उसकी तनख्वाह से मैंने तीर्थ जाने की सोची थी, वह टाल गया, भूल गया हूँ इसको भी कि मैंने कभी सोचा था तुम्हारे गहने तुम्हें फिर बनवा दूंगा। लेकिन शांति, मेरा प्यार, उसमें तो कोई स्वार्थ नहीं, फिर उसने मुझे वही क्यों नहीं दिया। तब आंसू फूट पड़े उसकी आंखों से, लेकिन वाणी निकलती रही, मेरा अपना कौन था शांति, जो कुछ भी था इसी घर में ही तो था, उसकी भी तो लाज नहीं रखी उसने, उसका ही मान रख लेता तो कोई बात थी, क्या बिगड़ जाता उसका यदि इसे भी ठीक करवा देता। मेरे बाद ये घर उसका ही तो है, लेकिन शांति ऐसा होता तब ना, उसके दिमाग में तो इसे बेचने की बात अड़ी पड़ी थी, उसने अपना कोई रिश्ता ही कायम नहीं रखा इस घर से। और शांति, ये घर मेरा, मेरा सगा है, मेरा बड़ा भाई है, इसको ठीक करवाने से बेहतर उसने एक नया घर बनवा लिया, एक घर जिसे वह सिर्फ अपना कह सके, जो सिर्फ उसका है। सुना नहीं तुमने, उसने लिखा है, मैंने अपना घर बनाया है मेरे घर से दूर, और यहाँ तुम कहती हो उसका घर, मेरा घर एक ही है। एक ही होता शांति तो वह पहले ही ना मुझे लिख देता, मेरे ही हाथों ना उसकी नींव डलवाता, तब आंसू बह निकले थे उसकी आंखों से। भावनाओं का वेग शांत हुआ तो शांति ने पूछा, दिल्ली जाओगे, क्या करना है? धीमे से साधुराम ने कहा, जब उसने लिखा है तो चले ही जाओ, उसे समझ होगी तो जान ही जाएगा, नहीं तो हमारी जिंदगी तो कट ही जाएगी। अब शांति के शब्दों में करुणा थी, उस करुणा ने साधुराम के मन को भी ढाढ़स बंधाया। तब उसे लगा वह अकेला नहीं रहा सतीश के बिना, शांति भी उसके साथ है, सदा ही साथ रहेगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए वह साया बनी रहेगी उसका। और तब साधुराम ने बजाए भावनाओं में बहकर कुछ अनाप शनाप कहने के उससे कहा, परसों चलेंगे दोनों ही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, दोनों गए तो रुक जाना पड़ेगा, बेहतर है तुम ही जाओ और दो एक दिन बिताकर लौट आना। साधुराम ने शांति का कहा सुनकर महसूस कर लिया था कि उसके दिल में भी पुत्र के प्रति खेद समा गया है, उसकी भावनाओं को भी चोट लगी है, और अपनी ममता को दबाने के लिए वह पुत्र से दूर हटकर ही रहना चाहती है। तब साधुराम चाहकर भी शांति से अधिक आग्रह नहीं कर सका। साधुराम रात के समय दिल्ली पहुंचा, सतीश का मकान ढूंढने में उसे अधिक परेशानी नहीं हुई, घर पर सतीश व सुमिता दोनों ही थे। पिता को आया देखकर सतीश प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोला, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। तब सुमिता ने कहा, मांझी को भी ले आते बाबूजी। तब साधुराम ने बहाना बनाते हुए कहा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ उन्हें? सतीश ने पूछा। होना क्या है, बुढ़ापे में कुछ ना कुछ तो बीमारी लगी ही रहती है। साधुराम ने बात टाल दी। कुछ देर तक कमरे में शांति व्याप्त रही, फिर उसी ने कहा, गृह प्रवेश कब किया? आज 10 दिन हो गए हैं। सतीश को बताते हुए कुछ झिझक महसूस हुई। उससे 10 दिन पहले बाप को खबर नहीं कर सकते थे? कटाक्ष करते हुए बड़े शांत स्वर में कहा साधुराम ने। शायद वह बड़े प्यार से पुत्र के दिल को छेदना चाहता था। उसकी यह बात सुनकर सतीश ने बड़े संयमित स्वर में कहा, बाबूजी, दरअसल उससे 2 ही दिन पहले मुहूर्त पक्का हुआ था। बाबूजी, बस वो सतीश से एकाएक कुछ जवाब ना बन पड़ा, फिर बोला, बनवाने में कुछ इतना व्यस्त था कि समय ही नहीं निकाल पाया आपको लिखने का। एकाएक जमीन का सौदा हुआ और बनवाना पड़ा और मुहूर्त भी तभी का निकलता था। मैंने आपको पत्र तो तभी लिख दिया था। ठीक ही कहते हो बेटा, अब जो भी करते हो ठीक ही है, लेकिन माँ बाप का भी जरा ध्यान रख लेना चाहिए, कुछ उनकी भी आशाएं होती हैं। साधुराम ने स्वयं को अनुपस्थित रखते हुए कहा, मैंने बाबूजी कभी ऐसा काम तो नहीं किया जिससे कि आपको दुख महसूस हो, मैं तो सदा ही आपको हर बात लिख देता हूँ। सतीश का स्वर शांत था। यह सुनकर साधुराम ने कहा, हाँ तभी तो मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ से कि हम काठ के पुतले हैं, जमाना जिधर नचाएगा नाचना पड़ेगा, जिसकी जितनी बड़ी उंगलियां होंगी वही तो आसानी से नचा सकेगा, और तुम किसी से कम हो क्या? सतीश को उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ, जैसे विश्वास ना कर पा रहा हो बोला, ये बाबूजी आप कैसी बातें करने लगे, क्यों मैंने ऐसा क्या कुछ कह दिया जो तुम हैरान हो गए हो? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? दुनिया का जो दस्तूर बन गया है उसी की तो बात कर रहा हूँ। माँ बाप कठपुतले नहीं बनकर रह गए अपनी संतान के हाथों क्या? पर हाँ, तब जैसे एकाएक याद हो आया हो उसे, लगा जैसे कुछ गलत कह गया है, तब बोला, माँ बाप वही काठ के पुतले बन जाते हैं जो अनपढ़ हो, गरीब हो, गवार हो, और उनका बेटा बड़ा आदमी हो, बड़ा अफसर, इज्जत मान और पैसे वाला। तब सतीश कुछ झल्लाया, स्वर भी कुछ तीव्र हुआ उसका, बोला, बाबूजी आप ये क्या कहे जा रहे हैं? मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा, या आपने ही ऐसा कहते मुझे कभी सुना है? कहते नहीं, करके दिखाते तो देख लिया यही सब। कोई भी नहीं आया था क्या मुहूर्त में? मैं समझा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई दोस्त यार भी नहीं आया था तुम्हारा? और क्या सुमिता के माता पिता भी नहीं आए थे? वे सब लोग तो यहीं थे, दिल्ली में ही। सतीश झल्ला रहा था निरंतर। शायद उसे यह आशा बिल्कुल नहीं थी कि उसके पिता इस तरह नाराज हो गए होंगे उससे। और मैं दिल्ली से बाहर था, तब क्यों तुम सब कुछ कर चुकने के बाद मुझे दो लाइन लिखकर परेशान कर देते हो? मेरे बिना तुम्हारा सब काम पूरा हो जाता है, फिर मुझे ये झूठी इज्जत देने की खातिर क्यों कर व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हो? फिर कटाक्ष करते हुए उसने कहा, जरा सोचो तुम कितने काबिल अफसर हो, तुम्हारा हर पल कितना कीमती है, तब मुझ जैसे गंवार की खातिर इतना समय व्यर्थ कर क्यों अपनी तरक्की की राह में रोड़ा अटकाते हो? साधुराम का स्वर कुछ उग्र हो चुका था। तब सुमिता ने बात दबानी चाही, बाबूजी आप थके हुए हैं, आराम कीजिए। लेकिन साधुराम शायद अब कुछ और भी कहना चाहता था, जैसे उसे इस बात का आभास हो चुका था कि सतीश से इस विषय पर बात करने का अवसर उसे फिर नहीं मिलेगा, इतनी देर वह उसके पास फिर नहीं बैठ सकेगा, और उसे यूं ही मन की बात मन में रखे लौट जाना पड़ेगा। इसीलिए बोला, तुम लोग मेरे आराम की फिक्र क्यों करते हो? मैं जानता हूं कब मुझे आराम करने को मिलेगा। चैन की नींद एक दिन ही ले पाऊंगा अब तो लगता है, और उस दिन भी मत पूछना मुझे। पर तब लिख भी नहीं पाओगे मुझे कि मेरा बाप मर गया, मेरे सिवा और तो कोई नहीं बाप तुम्हारा। बाबूजी, तब सुमिता केवल इतना ही कह सके। उसका मन किसी अज्ञात आशंका से धड़कने लगा था। वह परेशान हो उठी थी अपने श्वशुर का यह रूप देखकर। पहली बार जब साधुराम यहाँ आया था तब उसने उसे ऐसी बातें करते कभी नहीं देखा था। लेकिन साधुराम को इसकी क्या खबर, वह तो कहे जा रहा था, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया सतीश, याद करने की बात नहीं, यह हमारा फर्ज था। लेकिन तूने, तू आज ये बता, तूने हमारे लिए क्या किया? बाबूजी, आपने मुझे मौका ही कब दिया? मैं तो आपको दिल्ली लेकर आया था अपने पास, मगर आप यहां टिके ही नहीं। इसमें मेरा कुछ दोष हो तो बताइए। सतीश समझ गया था कि साधुराम क्रोध में है। उसके मन में जिस बात के कारण आक्रोश उमड़ा है, वह तूफान का रूप धारण करना चाहता है, और अपनी तरफ से एक प्रयत्न किया उसने। शायद यही कुछ उसके युवा मन के बस की बात थी। नहीं, दोष तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं कुछ कर जो नहीं सका, जो मैं तुम्हारी दिल्ली में रहने के काबिल नहीं था। लेकिन इस दिल्ली में लाकर तुमने मुझे क्या बनाकर रख छोड़ा था? एक घर का कीड़ा, जिसकी जगह सिर्फ दराज के अंधेरे कोने में होती है। तुम्हारे घर की ये रोशनी, तुम्हारे आसपास की ये रंगीनी, तुम्हारी ये महफिलें तुम्हारे लिए ही तो हैं। मैं कहीं उनमें घुल मिल जाता तो जहर ना घुल जाता सब में, तुम्हारे सगे साथी बीमार ना पड़ जाते। बोलो, तुमने कभी कहा मुझे बंद कमरे से बाहर निकलने को? तुमने कभी चाही अपने चेहरे की हंसी का एक टुकड़ा मुझे दे देने की? आपको मेरा हंसना बुरा लगता है, मुझे आज पता लगा। ले लीजिए मेरे चेहरे की हंसी। बाबूजी, यदि आप हंसना चाहें तो अब भी हंस सकते हैं। किसी ने आपका मुंह तो नहीं पकड़ रखा, मेरी हंसी में आप शरीक हो, किसने आपको रोका है? आपने खुद ही तो कहा था हंसना गाना आपको इस कदर अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था। सतीश का स्वर कुछ उग्र हो उठा था। बाबूजी, तब सुमिता इतना ही कह सकी कि साधुराम की आवाज में उसके शब्द दब गए, उसे चुप हो जाना पड़ा। साधुराम कहने लगा था, तुम क्या, तुम्हारा मन भी मेरी दुनिया से कोसों मील दूर अपने में ही लीन हो गया था। कभी मौका दिया था तुमने मुझे अपनी बात कहने का, अपने अरमान कहने का? जानते हो कितने अरमान थे मेरे, कितने सपने लिए थे मैंने तुम्हारे सहारे। लेकिन है कोई ऐसा जो पूरा हुआ? तुम्हें दिखता हो तो कहो। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? अपने प्रत्येक शब्द पर जोर डालते हुए सतीश ने कहा, तुम्हारा कुछ दोष नहीं। जैसे मैंने तुम्हें कभी कही ही नहीं अपने मन की बात। तुमने अपना मकान बनवा लिया, क्या उस मकान की कभी परवाह की, जहां तुम्हारा बचपन बीता था, जहां तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी बिता दी? तुम्हें कहा था मां के गहनों के लिए, नहीं बनवाए, कुछ जवाब ही नहीं दिया। तुमसे सबसे पहले लिखा था हमें तीर्थ यात्रा करवा दो, करवा दी क्या? कितनी बार देशाटन कर लिया हमने। साधुराम के स्वर में उग्रता निरंतर बढ़ती जा रही। तब सतीश ने भी कड़वे स्वर में कहा, मैंने आपको मना भी तो नहीं किया था, जो आप इतना कह रहे हैं, बचत होती तो सब करवा देता, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती। हाँ हाँ, हर इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन जानते हो कब? जब चिता को मेरी आग लग जाती। तुम कहते हो तुम्हारे पास बचत नहीं, फिर भी आए दिन पार्टियां करते हो, खुद आए साल घूमने जाते हो। तुम अपने लिए मकान खरीद सकते हो, अपनी बीबी के लिए गहने बनवा सकते हो, फिर भी कहते हो मेरे पास बचत नहीं। लेकिन जानते हो मेरा मकान आज टूटा फूटा क्यों है? तुम्हारी माँ के गहने कहाँ गए? हम आज तीर्थ पर क्यों नहीं जा सकते? जवाब दो, दे सकते हो क्या? लेकिन तब सतीश माथा पकड़कर बैठा रहा। साधुराम रुका नहीं, आगे बोला, अब बोलो, बोलते क्यों नहीं? भूल गए क्या, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने रात दिन जी तोड़ मेहनत की अपने इस एक हाथ से।
भूल गए कि तुम्हारी माँ के गहने दिल्ली के ही एक सुनार को बेचे थे मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए, और यह भी सोच नहीं सके कि तीर्थ या कहीं और घूमने भी नहीं जा सके तो तुम्हारी पढ़ाई की खातिर, तुम्हें ऊंचा इंसान बनाने की खातिर, और आज मैं कुछ कर नहीं सकता तो इसमें मेरा क्या दोष। काश मैं तुम्हें जवान बनाते बनाते खुद बूढ़ा ना हो गया होता। कौन पूछता तब तुम्हें, कौन तुम पर आस लगाए बैठा रहता, और आज तब क्या मैं अपने भाग्य पर इस तरह आंसू बहाता। लेकिन मेरी किस्मत तब साधुराम की आंखें बह निकली। लेकिन सतीश भी अब बिना कुछ सोचे समझे कहने लगा, ठीक है आपने मुझे पढ़ाया, लेकिन यह जताकर आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने जो कुछ भी किया आपका फर्ज था, अब आप पुरानी बातें आज यहाँ खोदने पर क्यों तुले हैं। मैंने क्या गुनाह किया है जो बजाय शाबाशी के मुझे लताड़ रहे हैं। तब साधुराम ने कहा, स्वर कुछ करुण बन गया था आंसुओं के कारण उसका, आज मेरी हर बात तुम्हें लताड़ लग रही है। कोई बात नहीं, आज तुम बड़े आदमी बन गए हो, मुझ जैसे छोटे आदमी की बात भला कैसे सहन कर सकते हो। मैं तो अब स्वयं को तुम्हारे अर्दली से भी गया गुजरा महसूस कर रहा हूँ। तब एकाएक वह फिर उग्र हो उठा, तुम आज इतना बोल रहे हो मेरे सामने, बहुत घमंड आ गया है ना तुम्हें, बहुत बड़ा आदमी समझने लगे हो ना स्वयं को। पर जानते हो तुम्हें इस काबिल किसने बनाया है, मैं तुम्हें ना पढ़ाता ना आज तुम इस घर के मालिक होते, ना बड़े अफसर होते, और ना ही यह सुमिता तुम्हारी ब्याहता होती। तुम तब कहीं झोपड़ी में रहते, पेट भरने के लिए मजदूरी करते, और कोई अपड़ गमार तुम्हारी पत्नी होती बाबूजी। और तब सतीश आवेग में चिल्ला उठा, आप बेवजह अपने मुख से बुरी बातें निकाल रहे हैं, पिता होकर भी आप मेरी तरक्की से खुश नहीं। मैं सुबह से शाम तक नौकरी करता हूँ तो अपने सुख के लिए, पसीना बहाकर भी यदि अपने लिए सुख साधन ना जुटाऊं तो मुझ जैसा मूर्ख कौन होगा। मुझे अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, इज्जत बनाए बिना मेरा जीना भी दुर्भर है, और आप हैं कि यदि आपका बस चले तो मुझे भी एक गंवार बनाकर रख छोड़े, जिस पर सारी सोसाइटी के लोग मेरी खिल्ली उड़ाएं। मैं आपकी ये तमन्ना पूरी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तब साधुराम ने कहा, शुक्र है तुमने आज स्वयं ही मुझे गंवार कह दिया, यही बहुत है तुमने मुझे जो दिया। तब तक सुमिता में भी आक्रोश उमड़ आया था उसके प्रति। वह बोली, औरों के माँ बाप खुश होते हैं अपने बच्चों को तरक्की करते देखकर, और एक आप हैं जो जल रहे हैं। कैसे हैं आप जो पिता होकर भी अपनी संतान को खुश नहीं देख सकते, आपको हमसे इस कदर ईर्ष्या क्यों। और इस आक्रोश ने सुमिता की आंखों में आंसू भर दिए। साधुराम की इस प्रकृति को देखकर उसे अवश्य ही दुख पहुंचा था, और तब साधुराम चीख सा उठा, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, मुझे जलन होती है। हाँ हाँ मैं कुत्ता हूँ ना, मुझे जलन होती है तुम्हें हड्डी खाते देखकर। बाबूजी आपको यहाँ चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। तब सतीश ने तीखे स्वर में कहा, मरे बाबूजी मैं अब किसका बाप हूँ। याद रखो सतीश, मैं जीता रहा तो कभी तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आऊंगा। भूल जाओ कि तुम्हारा बाप भी था, तुमने मुझे जो इज्जत दी मरते दम तक मुझे याद रही। तब उसका हुआ बोला, जा रहा हूँ मैं, कभी मेरी आंखों के सामने ना आना, मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए मर चुके हो, कुत्ते नीच तुम्हारा यही रूप मुझे याद है।
बस इतनी ही बात हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे फिर अब तक नहीं मिले। नीम का पत्थर सीलन के कारण कच्चा पड़ते पड़ते एकाएक टूट गया। उन्होंने भूलने का प्रयत्न किया स्वयं को, यह धारणा करने की चेष्टा की कि उनका उससे कभी भी किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा। यह वास्तविकता है, लेकिन इसी वास्तविकता को अपनाने के लिए इन्होंने क्या कुछ सांत्वना नहीं दी स्वयं को। साधुराम कितना प्रयत्न करता है कि किसी के सामने उसकी आंखें ना बहें, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। उसे आंसू बहाते कोई देखता है तो झट से समझ जाता है कि कोई दुख इस व्यक्ति को भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। अब तो भूल जाना चाहता है वह उसकी सब गलतियां, देखना चाहता है बस उसको अपनी आंखों के सामने खड़ा, लेकिन ऐसा होता ना देखकर निराश हो उठता है और निराशा की चरम सीमा पर पहुंचकर सब बीते दिन उसे याद आते हैं और वह तड़पता है। तब कोई सांत्वना देता है उसे, निराशा से खींच बाहर निकालने के प्रयत्न में कोई कहता है, जीवन क्या है? मधुरिम स्वप्न, अज्ञात का, अविनाशी का। स्वप्न कब समाप्त होगा, तब क्या होगा, यह विचारणीय नहीं। साधुराम, यह जीवन है बस। जीवन एक नाटक है और इस नाटक के तुम एक पात्र हो। तुम्हें केवल अभिनय करना है, ऐसा अभिनय जिसे देखकर दर्शक को यह आभास ना हो कि कहीं इसमें नाटकीयता का पुट है। तुम्हारा अभिनय वास्तविकता का द्योतक होना चाहिए। नाटक की कथा वस्तु, संवाद इत्यादि परिस्थितियों के अनुसार तुम्हें ज्ञात होते रहे हैं और अंत तक होते रहेंगे। समय से पूर्व कुछ जान लेना लाभदायक नहीं होता। हो सकता है आगे का पूर्व ज्ञान तुम्हें और निराशावादी बना दे, या तुम इतने हर्षमयी हो उठो कि अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों को भूल जाओ। ऐसा होने पर तुम अपने वर्तमान को भूल जाओगे, जिससे संपूर्ण नाटक की कड़ियां बिखर जाएंगी। बेहतर है तुम अपने वर्तमान में मग्न रहो, आगे पीछे की कुछ मत सोचो। स्वप्न का अंत अभी सोचा तो कड़ियां टूट जाएंगी और तुम पूर्णतः निराशावादी बन जाओगे। और यह सुनते सुनते ही साधुराम की आंख लग गई।